مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔ ہمارا آج کا مذاکرہ امریکہ اور پاکستان کے بیچ اسٹریٹجک ڈائیلاگ پر ہے، جس کا چھٹا راؤنڈ پیر کو واشنگٹن میں شروع ہوا۔ اس پروگرام میں ہم سنیں گے کہ صدر اوباما کی صدارت کے آخری سال میں واشنگٹن اور اسلام آباد کے بیچ کیا بات چیت ہوئی، دیگر یہ کہ دونوں ملکوں کے درمیان رشتے کتنے پائیدار رہیں گے۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا مذاکرہ کال ان شو بھی ہوتا ہے، لہٰذا آپ لوگ بھی اس گھنٹے میں مفت کال کر کے شریک ہو سکتے ہیں۔ ہمارے کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-789-0800-777-89۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے دفتر خارجہ کے سابق افسر ڈاکٹر ماروین وائنبوم، اور کیونکہ وہ انگریزی میں بات کریں گے لہٰذا ان کا ترجمہ کریں گے ندیم یعقوب، جو اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ہوں گے جوہری سائنسدان ڈاکٹر عبدالحمید نیر، جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو سب سے پہلے ایک مختصر سی رپورٹ سناتی ہوں جو ہماری ساتھی تابندہ نعیم نے تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ۔
پاکستان اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا چھٹا دور آج سے واشنگٹن میں شروع ہو گیا ہے۔ پاک امریکہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے آغاز پر امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اپنے ریمارکس میں شرمین عبید چنوئی کی ڈاکومنٹری فلم اے گرل ان دا ریور کو اس سال کا شارٹ فلم ڈاکومنٹری کا آسکر انعام جیتنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے باچا خان یونیورسٹی چارسدہ میں دہشت گردی کے حالیہ واقعے کی مذمت کی اور کہا کہ امریکہ پرتشدد انتہا پسندی کے خلاف پاکستان اور پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شدت پسند پاکستان کے مستقبل کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ پاکستانی نوجوان سوچنا سیکھیں۔ انہوں نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اور دہشت گردی کے خلاف تعاون کو دونوں ملکوں کی سلامتی اور تحفظ کے لیے اہم قرار دیا اور کہا کہ امریکہ پاکستانی فوج کی ان قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے جو انہوں نے آپریشن ضرب عزم اور شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے فوجی آپریشن کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے افراد کے لیے $250 ملین کی رقم فراہم کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ان کے بقول، ہم انسداد دہشت گردی کی حکمت عملی میں پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے۔ جان کیری نے پاکستانی حکومت کی طرف سے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کو سراہا، جس نے ان کے بقول جنگجوؤں کے لیے نئی بھرتیاں کرنے اور ان کے لیے سرمایہ جمع کرنے کی صلاحیت کو متاثر کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان کے اس عزم کا بھی خیر مقدم کیا کہ دہشت گرد گروہوں کے درمیان کوئی امتیاز نہیں برتا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حقانی نیٹ ورک، لشکر طیبہ اور جیش محمد جیسے گروہ پڑوسی ملکوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو متاثر کرتے ہیں اور پاکستانی قوم کی خود مختاری اور مستقبل کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ ایٹمی عدم پھیلاؤ اور ایٹمی ہتھیاروں کا تحفظ بھی امریکہ اور پاکستان دونوں کے لیے مشترکہ تشویش کی بات ہے، اور توقع ظاہر کی ہے کہ آنے والے سال میں دونوں ملک ایٹمی ہتھیار رکھنے والے ذمہ دار ملکوں کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں پر بات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے بھی اہم یہ ہے کہ اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس معاملے کو اپنی پالیسی کا حصہ بنائے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ وزیراعظم نواز شریف اگلے ماہ ہونے والی نیوکلیئر سیفٹی کانفرنس میں حصہ لیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ دونوں ملکوں کے اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا مقصد تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، توانائی، قانون کے نفاذ اور علاقائی استحکام سمیت ہر شعبے میں تعاون کو آگے بڑھانا اور مضبوط کرنا ہے، جو ان کے بقول ان کی ہمیشہ ترجیح رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے تحت امریکہ اور پاکستان کے گروپس اگلے 5 سالوں میں پاکستانی مارکیٹس کو غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش بنانے اور پاکستان کی افرادی قوت میں خواتین کا حصہ بڑھانے پر بات کر رہے ہیں۔ پاک امریکہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں حصہ لینے کے لیے پاکستان سے مشیر خارجہ سرتاج عزیز اور وفاقی وزیر برائے پلاننگ، ڈیولپمنٹ اور ریفارم ایس این اقبال سمیت 4 پاکستانی عہدیدار واشنگٹن میں ہیں۔
جی، اور ہم ابتدا کرتے ہیں دفتر خارجہ کے سابق افسر ڈاکٹر ماروین وائنبوم کے ساتھ۔ ڈاکٹر وائنبوم، ویلکم۔ Right, you can hear me. And Dr. Weinbaum, when I ask you a question, my colleague Nadeem Yaqub will translate so that people in Pakistan can understand it. And let me start with asking you, you know that this is an election year in the U.S., and there's a concern in Pakistan that after 2016, the U.S. may leave Pakistan alone. Now, if you could tell us about this U.S. strategic, Pakistan strategic dialogue, do you have hopes for it that it will deliver to Pakistan in the future? And please wait.
नफीसा ने सवाल किया है कि ये जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान हो रहा है उससे क्या उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं
डॉक्टर वाइनबॉम
यस आई थिंक दैट द पाकिस्तान यूएस डायलॉग द स्ट्रेटेजिक डायलॉग has meaning for this year and after this current administration. The basics will not have changed. And I think that what draws the two countries together and explains both their areas of cooperation and difficulties will continue very much as they have been.
डॉक्टर वाइनबॉम कह रहे हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो तावुन है वो ना सिर्फ मौजूदा साल के लिए मानी रखता है बल्कि मुस्तकबिल में भी वो एक बामानी ताल्लुक साबित होगा और जो बुनियादी तावुन के नुक्ते हैं जो बुनियादी इश्यूज हैं जिन पर तावुन हो रहा है वो उसी तरह से पहले की तरह जारी रहेंगे
डॉक्टर वाइनबॉम व्हाट इज बेसिकली द यूएस वांट फ्रॉम पाकिस्तान एट दिस स्टेज
नफीसा का सवाल है कि अमेरिका की क्या ख्वाहिशात हैं पाकिस्तान से या वो क्या तवक्कुआत रखता है पाकिस्तान से
यस
द डिमांड्स आर फैमिलियर वंस द यूएस कंटिन्यूज टू एनकरेज पाकिस्तान टू यूज फुल प्रेशर अगेंस्ट द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स इन द फाटा एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जनरली थ्रू आउट द कंट्री I might say in this regard, though, that it's rather complicated because at the same time that the United States continues to put pressure on Pakistan to curb these groups, it also is trying to get Pakistan to bring Taliban to the table to negotiate with the Kabul government. And there are contradictions in these two policies because one of the groups that the United States most wants action taken against is the Haqqani group. But the Haqqani group has now amalgamated itself with the mainline Taliban in Quetta. So that this has become very confusing.
डॉक्टर वाइनबॉम कह रहे हैं कि अमेरिका की जो तवक्कुआत है पाकिस्तान से वो किसी हद तक जानी पहचानी हैं एक तो अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान की हौसला अफजाई करे ताकि वो फाटा और दूसरे इलाकों में जो इंतहा पसंद ग्रोह हैं या दहशतगर्द ग्रोह हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे अगरचे अमेरिका एक तरफ पाकिस्तान पर दबाव भी डाल रहा है मगर साथ साथ वो ये भी चाहता है कि पाकिस्तान तालिबान को डायलॉग के मेज़ पर लाने की कोशिश करे और उसमें वो मुआवनत करे इन दोनों पॉलिसीज़ में डॉक्टर वाइनबॉम का कहना है कि एक तजाद पाया जाता है क्योंकि हक्कानी ग्रुप जो है या हक्कानी नेटवर्क का जो ग्रोह है वो अब किसी हद तक दूसरे तालिबान के ग्रोहों के साथ मिल चुके हैं उनके साथ तावन कर रहे हैं
Dr. Weinbaum, you say the situation is extremely complex, and of course we see that. Given that perspective, do you have hope that Pakistan can succeed in bringing the Taliban to the table?
Nafisa ka sawal hai ki is pechidgi ke dauran, is pechidgi ke bawajood, kya ye umeed rakhni chahiye ki Pakistan Taliban ko dialogue ke liye tayyar kar sakta hai?
Yes.
I'm not optimistic about this because I think what we have seen here in the divisions within the Taliban is that even if Pakistan succeeds in pressuring certain parts of the Taliban, like those that are loyal to Mullah Mansoor, it will not be able to bring the full range of insurgent groups that are operating in Afghanistan to negotiate. So that I think there's too much expectation here that Pakistan is going to be able to deliver somehow, and that somehow Pakistan alone is the key to a settlement. I think Pakistan has a role to play, but in the end, the Taliban will pursue their own interests, and at the moment, those interests are probably, as they see it, those interests are that there is no need to compromise and that a military solution is the only one in their interest.
Dr. Weinbaum keh rahe hain ke unhein is ye jo tawqqaat hain unse koi zyada umeedein nahi hain aur uski wajah wo batate hain ke ek taraf to agar Pakistan kisi had tak Mullah Mansoor ke jo log hain Taliban ke jo log hain Mullah Mansoor ke sath उनको मेज़ पर लाने के लिए कामयाब हो भी जाता है तो दूसरे ग्रोह जो हैं जो मिलिटेंट ग्रोह हैं उनके साथ बातचीत या उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल होगा और दूसरी तरफ ये है कि तालिबान जो है इस सूरत हाल में अपने मुफादात के लिए वो लड़ते रहेंगे जो वो समझते हैं कि उनके मुफादात हैं और उनके नज़दीक बहुत मुमकिन है कि जो उनके मुफादात की तहफ़ुज़ है वो सिर्फ अस्करी जो सलाहियतें हैं उसी के ज़रिए हो सके
जी और मैं आप लोगों को बताऊं कि चंद मिनट बाद हम डॉक्टर मार्विन वाइनबॉम को खुदा हाफिज़ करेंगे लिहाजा अगर आप लोग भी उनसे कोई सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं हमारे कॉल करने का नंबर है 0800-777-8900-0800-777-89 डॉक्टर वाइनबॉम वी हैव ए न्यूक्लियर साइंटिस्ट विद अस राइट नाउ एंड आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू व्हिच इज that there's a great deal of concern in the US about Pakistan being a nuclear power and of Pakistan increasing its nuclear stockpile. Did the talks take this into account and what are the expectations from Pakistan?
Sawal ye hai ki America mein Pakistan ka jo jewelry program hai us hawale se kafi tashweesh paayi jaati hai. तो अभी जो डायलॉग हो रहा है उसमें पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके बारे में कोई बातचीत हुई है ख़ास तौर पर पाकिस्तान जो अपनी न्यूक्लियर वेपन्स है उनमें जो इजाफा कर रहा है उस हवाले से
यस
डिड यू वांट मी टू आंसर
यस यस
यस द यूनाइटेड स्टेट्स मेजर कंसर्न हियर इज दैट पाकिस्तान इज प्रोसीडिंग रादर रैपिडली to develop tactical nuclear weapons. That has been a concern now for some time. The U.S. believes that that development would be destabilizing, that the danger which the United States most fears of proliferation of nuclear material, nuclear weapons being made available to terrorist groups. This is what bothers the United States. And I think that in our discussions with Pakistan on nuclear issues, it these days accepts Pakistan's armory. It is not anxious to see Pakistan proceeding as quickly as it has to build up its arsenal of weapons, but mostly it's about this movement into tactical weapons and the possible implications.
Dr. Weinbaum ka jawab hai ke America ko badi tashweesh hai Pakistan ke nuclear weapon ke jo nuclear jo program hai us hawale se khaas taur pe जो ज़्यादा तशवीश पाई जाती है वो टैक्टिकल वेपन्स के बारे में है टैक्टिकल वेपन्स वो हथियार होते हैं जिनको बैटल ग्राउंड में लड़ाई के दौरान इस्तेमाल किया जाता है उनका ख्याल है कि इससे अमेरिका का ख्याल है कि इस टैक्टिकल वेपन्स का जो फैलाव है उससे खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा और जोहरी हथियारों का जो फैलाव है उसमें इजाफा होगा। और ये भी अमेरिका को तश्वीश है कि इससे ये खतरा भी बढ़ सकता है कि दहशत कहीं ये जोहरी हथियार जो हैं वो किसी भी सूरत में दहशतगर्द ग्रोहों के हाथ ना लगें। तो अमेरिका को इस हवाले से काफ़ी तश्वीश है।
जी डॉक्टर वाइनबॉम, स्टे विथ अस। मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मुज़ाकरा सुन रहे हैं और हम बात कर रहे हैं अमेरिका और पाकिस्तान के बीच स्ट्रेटेजिक डायलॉग के बारे में, जिसका छठा राउंड पीर को वाशिंगटन में शुरू हुआ। हमारे साथ दफ्तर खारजा के साबिक अफसर डॉक्टर मार्विन वाइनबॉम हैं, जो वाशिंगटन में होते हैं, और हमें जौहरी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल हमीद नैयर ने ज्वाइन किया है। बाज़ लोगों ने हमें कॉल भी किया है, उनको भी हम सुनेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर आईडी ब्रेक लेते हैं।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमरीका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
जी, और हम जौहरी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल हमीद नैयर की तरफ जाते हैं। और डॉक्टर नैयर, आपको खुश आमदेद।
सलाम अलैकुम जी।
तो आपने डॉक्टर मार्विन वाइनबॉम को सुना और अमेरिका को खदशात हैं, खासतौर पे ये कि पाकिस्तान टैक्टिकल वेपन्स में असलाहा में जो है वो बढ़ावा कर रहा है, उसके अलावा जौहरी मवाद भी बढ़ा रहा है। आपके ख्याल में ये जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग शुरू हुआ है पाकिस्तान अमेरिका के बीच कल पीर को वाशिंगटन में, इस हवाले से कोई बातचीत होगी कि असलाहा को कम किया जाए?
यकीनन, मेरा ख्याल है बात हो भी चुकी है थोड़ी सी, और इसका इजहार शायद आज शाम कभी होगा। अमेरिका को तश्वीश है दो चीजों से, जैसा कि डॉक्टर वाइनबॉम ने कहा। नंबर एक इस बात से कि आपका फिसाइल मटेरियल बहुत तेजी के साथ आप पैदा कर रहे हैं, बहुत तेजी के साथ बमों में इजाफा कर रहे हैं, और नंबर दो इस बात से कि आपके टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं, मैदान जंग के हथियार बनाए हैं, जो आप समझते हैं कि आपकी जरूरत है। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि उसकी वजह से अगर इस्तेहकाम पैदा होता है और किसी भी वक्त किसी भी लफ्जिश से एटमी जंग छिड़ सकती है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जो बहुत खतरनाक साबित होगी। तो ये बात हिंदुस्तान अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में हो रही है। पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है वो ये लिया है कि देखिए जी, हमें हमारे अंदेशे हैं, हमारे खदशात हैं, हमें ये खदशात हैं, 1, 2, 3, 4, 5, उनमें सारे के सारे खदशात हमारे हिंदुस्तान से मुतालिक हैं। हिंदुस्तान की जो गैर जौहरी सलाहियत है, जंगी सलाहियत है, वो बेतहाशा तेजी के साथ बढ़ रही है। हर साल उसके अंदर पाकिस्तान से 5-6 गुना 8 गुना ज्यादा इजाफा हो जाता है।
डॉक्टर नैयर, 2-3 मिनट बाद हम भारत चलेंगे, वहां से हमारे साथ होंगे एक सियासी तज्ज़ियाकार, यकीनन हम इस पर बहस करेंगे। लेकिन क्योंकि डॉक्टर वाइनबॉम से कुछ सवालात मंसूब हैं, तो बारी बारी हम कॉलर्स को लेते हैं इसी मौजू पर। डॉक्टर वाइनबॉम, देर आर सम कॉलर्स हु हैव क्वेश्चंस फॉर यू, एंड वी विल ask you to answer those questions and then say goodbye. Sajid Irshad ne call kiya hai Patoki se.
Acha ji, assalam alaikum. Sabse pehle to mohtarma aapko aur aapke mazal mehmanon ko mera bahut se salam rahega.
Wa alaikum
salam. Mera doctor ko kaun se sawal rahega ki ye Pakistan ke johri hathiyaron ke bare mein America ko to tashvish ho rahi hai, lekin India mein jo Hindustan mein jo hathiyaron ka badhav hai Pakistan se kahin zyada hai, और वो कश्मीर के हवाले से भी पाकिस्तान डायलॉग के ऊपर नहीं आ रहे वो लोग, और ना ही कोई ऐसा हो रहा है। तो क्या आया अमेरिका को ये नहीं चाहिए कि पाकिस्तान के साथ जो है ये मोहम्मद अमन की जो भाईचारा है इसमें वे फरोग दे, और अमेरिका जो इंडिया है उसने कश्मीरी नेतों पर जो जुल्म ढा रहा है, जो हथियारों का बरसात कर रहा है, तो वो क्या वो अमेरिका को नजर नहीं आता?
अच्छा सवाल आपने पूछा है। जी जी, हम ये करते हैं सवाल। और अबटाबाद से कॉल किया है फिदा मोहम्मद ने।
मैडम, मेरा डॉक्टर वाइन से ये क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट. एक तो ये है कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस जो पाकिस्तान के अंदर तालिबान है उनके ऊपर है, कतर के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है उनके ऊपर तो इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता डायलॉग के हवाले से. और दूसरी बात जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि F-16 के साथ अगर पाकिस्तान को ड्रोन किस्म की कोई ऐसी डिवाइस दे अमेरिका तो क्या वो अच्छा नहीं होगा टू कम बैक दी ज़र्ब असम साउथ वज़ीरिस्तान वगैरह में? पाकिस्तान की आर्मी को किस नज़र से अमेरिका देख रहा है जो इतना हम जान की कुर्बानियाँ दे रही हैं? और तीसरा ये,
बहुत शुक्रिया, हमारे पास वक्त कम होता है, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का. और मियाँ वाली से कॉल किया है मुरीद खान ने. जी जनाब कहिए.
السلام علیکم جناب, میرا بہن بام سے سوال جو ہے جناب, دو سال سے بات کر رہا ہوں. ایک وقت تھا پاکستان امریکہ کی دوستی پر فخر کرتا تھا, روس افغان جنگ میں ہمیں جھونک کر روس کے ٹکڑے کرنے کے بعد 60,000 جوانوں کی قربانی کے باوجود ہمیں ڈو مور کے مشورے دیتا ہے. سن 65 اور 71 کی جنگ میں ہم ساتویں بڑی لڑوں کو دیکھتے رہ گئے اور پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا.
بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ.
پاکستان امریکہ دوستی چاہتا ہے.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ہم کالز کو لیتے ہیں. Dr. Weinbaum, there are three questions for you, and
yes,
I'll take them one by one, and my colleague will translate. The first question is that India keeps growing its weapons. You know, they're ahead in conventional weapons, and they're also growing their nuclear stockpile. Plus, the caller says there's been no dialogue on Kashmir. Is the U.S. pursuing India to try to bring them to lower its weapons stockpile?
The feeling is that the both sides should be constrained, constrain themselves in the further development of their nuclear stockpile. I think that the United States has come to accept, though, that that there is now an approaching situation where it's going to be difficult for either side to deliberately start some kind of nuclear conflict. The fear, therefore, is that if it happens, it will happen more likely by accident than by intention. But as far as Kashmir is concerned, the United States can make no progress on that until both India and Pakistan are prepared to have serious discussions on the issue. And my own view is that there is no solution for Kashmir until there is a general rapprochement between India and Pakistan, and then the Kashmir conflict will become one that can be resolved, but not until that time.
Okay.
Pehle sawal ke jawab mein, jo ke jori hathiyaron se mutalliq hai, Dr. Weinbaum kehte hain ke یہ بات طے ہے, امریکہ کی یہ خواہش ہے کہ یہ جو جوہری ہتھیاروں کا پھیلاؤ ہے اس کو روکنا چاہیے دونوں اطراف سے. اور امریکہ یہ جانتا ہے کہ اس وقت دونوں ممالک یا خطے میں, ساؤتھ ایشیا جنوبی ایشیا میں, جوہری تنازع شروع نہیں ہونا چاہیے. ان کا یہ خیال ہے کہ اگر دونوں ملکوں کے درمیان اگر کوئی ایسا تنازع ہوتا بھی ہے جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے, تو وہ کسی بھی طرف سے جان بوجھ کر نہیں ہوگا, بلکہ ایک حادثاتی طور پر کچھ اگر ہو جائے تو ہو جائے. کشمیر کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ امریکہ اس بارے میں اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتا یا کوئی اپنا کردار ادا نہیں کر سکتا جب تک دونوں ممالک جو ہیں, بھارت اور پاکستان, وہ آپس میں بات چیت نہیں کرتے اور دونوں میں اس حوالے سے ایک رپروچمنٹ یا کوئی بات چیت کے لیے گراؤنڈ یا تیاری یا بات چیت عملی طور پر نہیں ہوتی.
I'll take two of the callers together, Dr. Weinbaum, and then we will say goodbye to you. Firstly, one of the callers thought that Pakistan does not have any influence on the Taliban office in Qatar. We won't ask you to address that. But his question was that will the U.S. consider giving drones to Pakistan? That's one question. And the other is the militarization of Pakistan, which happened when the Russians were in Afghanistan, and the fact that the U.S. actually flooded the area with weapons. What does the U.S. say about that?
As far as the drones are concerned, Pakistan seems at this point capable of its own drones. There are certain kinds of software that the United States uses its drones that it would not share with anyone. But I think that there is the possibility here of greater cooperation. There has been cooperation between the two sides in operations in the past, and I think that that's not a serious issue at this point. In general, the second question regarded,
when the Russians invaded Afghanistan.
Yeah, that's past history now, and I think that we should not be focusing on that. The weapons that are now available are weapons which have come into the area far more recently than when we look back at the 1980s. Yes, mistakes were made, but I think that now we have to recognize that the situation in Afghanistan is becoming rather critical, and that it is in the interest, certainly of Pakistan, to see that the Taliban do not have a victory.
We'll let you go at this stage while my colleague will. Thank you so much.
Sure. Bye-bye.
Bye-bye. ہمارے ساتھ تھے دفتر خارجہ کے سابق افسر ڈاکٹر ماروین وائنبوم. ہم دیگر جو شرکاء ہیں ان کے ساتھ بھی باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے, لیکن میرے کولیگ جو ہیں وہ ترجمہ کریں گے کہ ڈاکٹر وائنبوم نے کیا کہا.
ڈرونز کے مسئلے پہ ڈاکٹر وائنبوم کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس کسی حد تک ڈرونز تیار کرنے کی صلاحیت ہے, اور امریکہ کے پاس اس حوالے سے جو ایک سافٹ ویئر ہے جو وہ ڈرونز میں استعمال کرتا ہے, ان کا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا, کبھی بھی نہیں ہوگا کہ امریکہ وہ کسی بھی ایلائی یا کسی بھی ملک کے ساتھ اس کو شیئر کرے. اس حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان کسی حد تک کچھ تعاون جو ہے وہ آلریڈی جاری ہے. روس کے بارے میں جو سوال کیا گیا کہ اس وقت جو کولڈ وار میں بہت سے ویپنز جو وہاں پہ آئے اور بعد میں پاکستان کو چھوڑ کر اور امریکہ نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا, اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ جو کچھ بھی ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے, اور اس کے بارے میں ہم کیا بات کریں. ابھی جو ہتھیار خطے میں موجود ہیں یا فاٹا میں یا ٹرائبل ایریاز میں, وہ حال ہی میں آئے ہیں. انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ کولڈ وار کے زمانے میں امریکہ کے جو پالیسی تھی جنوبی ایشیا میں افغانستان کے حوالے سے یا پاکستان کے حوالے سے, اس میں کچھ غلطیاں ہوئیں, لیکن جو مین چیز ہے, بنیادی چیز ہے, وہ یہ کہ افغانستان کی صورتحال پر امریکہ کو تشویش ہے اور اس بارے میں سب کو مل کر کام کرنا چاہیے.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے ندیم یعقوب جو ترجمہ کر رہے تھے. ہم آگے بڑھتے ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے قمر آغا نے جو بھارت میں ہوتے ہیں, سیاسی تجزیہ کار ہیں, اور وہ بات کریں گے جس طرح سے ڈاکٹر عبد الحمید نیر نے بات کی اسٹریٹیجک ڈائیلاگ کے حوالے سے کہ بھارت میں بہت زیادہ اس وقت اسلحہ ہے اور جوہری مواد ہیں. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے مذاکرہ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں امریکہ اور پاکستان کے بیچ اسٹریٹیجک ڈائیلاگ کے بارے میں, جس کا چھٹا راؤنڈ پیر کو واشنگٹن میں شروع ہوا. ہمارے ساتھ اسلام آباد میں جوہری سائنسدان ڈاکٹر عبد الحمید نیر ہیں, جبکہ نئی دہلی سے ہمیں جوائن کیا ہے سیاسی تجزیہ کار قمر آغا نے. اور آغا صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید. جی قمر آغا, قمر آغا
جی بول رہا ہوں میں.
جی جی جی, آداب. تو یہ بتائیے, آپ کے علم میں ہے اس وقت ایک ڈائیلاگ چل رہا ہے پاکستان امریکہ کے بیچ واشنگٹن میں, بنیادی طور پہ آپ نے بھی دیکھا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف کافی اقدامات اٹھائے ہیں، کیونکہ بھارت کو بھی کچھ خطرات تھے ان دہشت گرد گروپ سے جو پاکستان سے بقول بھارت کے پاکستان سے آتے تھے. اس لحاظ سے بتائیے، اب کوئی سوچ پائی جاتی ہے بھارت میں کہ روایتی ہتھیار کم کیے جائیں، جوہری ہتھیار کو جو ہے اس کو کم کیا جائے؟
میں سمجھتا ہوں دونوں ہی کم کرنا بہتر ہوگا اس خطے کے لیے، روایتی بھی اور جوہری بھی. دیکھیے جہاں تک سوال ہے کہ پاکستان نے بہت سے اقدام اٹھائے ہیں ملیٹنسی کو کم کرنے کے لیے، دہشت کو کم کرنے کے لیے، مگر یہ ان گروپس کے خلاف ہیں جو پاکستان کی افواج سے لڑائی لڑ رہے تھے. ابھی ہمارے پاس حال ہی میں بھارت کے اوپر جو حملہ ہوا وہاں سے ہمارے ہوائی اڈے کے اوپر جسے کہنا چاہیے تھا، وہ ایئر بیس تھا وہاں پہ، اور وہ پٹھان کوٹ میں جو جس میں لوگ پاکستان سے آئے اور جیش محمد اس میں انوالو ہے، اور بھارت نے ان کو سب کچھ انفارمیشن بھی دی ہے، ان کے خلاف کیس بھی چلا ہے، اور پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ انہیں نے وہاں پہ اس کے جیش محمد کے کچھ آفیشلز کو بھی اریسٹ کیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا، یہاں پہ ہندوستان میں زیادہ تر لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ دہشت پہ کوئی خاص رکاوٹ نہیں آئی ہے. پاکستان اسی طریقے سے لشکر طیبہ ہو یا جیش محمد ہو، اور غور طلب بات یہ ہے کہ لشکر طیبہ اور یہ اس طرح کی آرگنائزیشنز کو یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی ایجنسی نے بھی دہشت گرد قرار پایا ہے، اور امریکہ نے بھی قرار کیا ہے، اور حافظ سعید جو اس کے سرغنہ ہے لشکر طیبہ کے، وہ اسی طرح گھومتے ہیں پاکستان میں، ان کو پوری فوج کی مدد اور حکومت کی مدد اور پولیس کا پروٹیکشن، ہر چیز ان کو مہیا ہے. تو یہ ابھی مطلب یہ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب نے بہت سے وعدے کیے ہیں، اور اسی کے وعدوں کے بیسس پہ بھارت چاہتا ہے کہ بات چیت کا سلسلہ آگے چلے، اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ یہ بات چیت، ماننا بھی یہاں پہ زیادہ تر لوگوں کا یہی ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا بھی یہی ماننا ہے کہ بات چیت ہی سے اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے، جنگ کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کی کیا حکومت جو نواز شریف صاحب نے وعدہ کیے ہیں اس سے پہلے، اس لیے کہ آصف زرداری صاحب نے بھی اس طرح کے وعدے کیے تھے مگر وہ پورا نہیں کر پائے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ان کو پورا کرنے میں، اس لیے کہ بھارت میں دہشت اور بات چیت کا ساتھ ساتھ چلنا مشکل نظر آتا ہے. ہمیں یہاں ڈیموکریسی ہے، دہشت گرد اگر ایک بھی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے تو پبلک اوپینین بدلنے لگتی ہے، پھر کسی بھی گورنمنٹ کے لیے بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے.
جی آپ ہمارے ساتھ رہیں چند منٹ. اور ڈاکٹر نیئر، آپ نے تمام باتیں بھی سنی، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اگلے ماہ یا اس ماہ کے آخر میں میاں نواز شریف یہاں واشنگٹن دوبارہ تشریف لائیں گے، اور کہا سوچا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو جوہری ہتھیاروں کا معاملہ ہے اس حوالے سے کوئی بات چیت کی جائے گی امریکہ اور پاکستان کے بیچ. آپ کسی حد تک پر امید ہیں کہ یہ بات چیت آگے بڑھے گی؟
شاید بہت کم، بہت زیادہ نہیں بڑھ پائے گی. دیکھیے ایسا ہے کہ پاکستان کے کنسرنز جتنے بھی ہیں، پاکستان کے ہتھیار، پاکستان کی فوج، پاکستان کی یہ فوجی حکمت عملی، ساری کی ساری ہندوستان کے خلاف ہے، کسی اور ملک کے خلاف نہیں ہے. اور ہندوستان کے خلاف کرنے میں ان کے نزدیک سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہندوستان کے خلاف ایک پیرٹی چاہتے ہیں، برابری کے ایک پیرٹی چاہتے ہیں، کہ بہت ایک دم توازن بہت بگڑنا چاہے. تو اس کے لیے وہ کہتی یہ ہے کہ آپ یا تو ہندوستان کو روکیں کہ اس کے پاس اسلحہ بہت زیادہ نہ ہو، یا پھر ہمیں الاؤ کریں کہ جو ہم سمجھتے ہیں ضروری ہے وہ ہم کرتے رہیں. میرا خیال میں جو ان کا آرگومنٹ ہے، یہ میں تو اس سے اتفاق نہیں کرتا ذاتی طور پہ، مگر میں یہ بتا رہا ہوں ایک آبزرور کے طور پہ، کہ ان کا یہ آرگومنٹ جب امریکہ کے سامنے جائے گا تو امریکہ اس کا کوئی جواب نہیں دے پائے گا. امریکہ کے سامنے یہ کہنا ہے کہ جی ہماری ضرورت یہ ہے، اور ہندوستان سے آنے والی سگنل ہمارے پاس یہ ہیں، ہم اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو بالکل بے بس نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں یہ کرنا ہوگا. ہندوستان، امریکہ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، لہٰذا بات آگے نہیں بڑھے گی. अमरीका दूसरी तरफ ये कह रहा है कि आप जो इस वास्ते अमरीका ये कहना है कि जी आप अपने हथियारों की तादाद में जो तेजी से इजाफा कर रहे हैं उसको कम कर दें, तो कहेंगे ठीक है हो सकता है कि आजकल हम 5 करते हैं हम उसको 4 कर देंगे, लेकिन हिंदुस्तान के बारे में आपका क्या ख्याल है कि वहाँ कितने हो रहे हैं, वो फिर एक मसला आएगा जिसमें अमरीका को के पास कोई बड़े स्ट्रांग आर्गूमेंट नहीं होंगे। जो उसके बाद बात होगी वो होगी टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की, और टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का कहना जो है कि देखेंगे ये हमारे सामने लिस्ट है उन तमाम बयानात की जो हिंदुस्तान से वहाँ के जिम्मेदार लोगों के उभरते रहे हैं एक के बाद हमें बहुत अंदेशा है बहुत धड़का है कि हिंदुस्तान से हमारे ऊपर कन्वेंशनल वेपन से हमले होंगे। इनसे बचने के वास्ते हमें ऐसी चीजें चाहिए हम उसके सिवा, क्योंकि आपने भी अमेरिका ने भी यही हिकमत अमली अपनाई थी रूस के खिलाफ यूरोप के अंदर, हम वही कर रहे हैं, लिहाजा हम कोई नई बात तो नहीं कर रहे, जो आपने किया था वही हम कर रहे हैं, और आपका भी वही सूरत हाल थी जो हमारी सूरत हाल आजकल है। अमरीका इस आर्गूमेंट के सामने कोई जवाब नहीं दे पाएगा, लिहाजा अमरीका के पास जो असल बात बचती है वो ये है कि क्या पाकिस्तान की जो डेवलपमेंटल नीड्स हैं उसमें से कुछ ऐसी हो जिनको अमरीका पूरी करने आजकल ना कर रहा हो और वो कर ले और पाकिस्तान उसके मुकाबले में राजी हो जाए तो शायद पाकिस्तान इसकी तरफ आ जाए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ख्वाहिश जो है वो ये है कि हमें न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बनवा दें आप, जैसे आपने इंडिया को बनवाया है। अमेरिका नहीं मानेगा ये बात, लेकिन पाकिस्तान का ख्याल ये है कि अपने इन्हीं आर्गूमेंट से वो अमेरिका को मजबूर कर सकता है कि और अमेरिका में एक्चुअली कई इंटेलेक्चुअल्स हैं जिन्होंने ये लिखा है कि पाकिस्तान को भी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बनाने में हर्ज कोई नहीं है, कोई बहुत बड़ा पाकिस्तान को गेन नहीं हो जाएगा, लेकिन जो ये आजकल की जो रंजिशें पैदा हो रही है ये खत्म भी हो जाएंगी।
अच्छा।
और उसको मेन स्ट्रीम में ले आना पाकिस्तान को बहुत फायदेमंद होगा, ये बहुत से लोगों ने आर्ग्यू किया है हिंदुस्तान अमेरिका में।
अच्छा।
तो पाकिस्तान उसी के ऊपर इंसार करेगा।
अच्छा। क्योंकि इस स्ट्रेटेजिक डायलॉग में बहुत सारी और भी बातें डिस्कस हुई, लेकिन इस फौजी पहलू पर हमारे साथ थे पाकिस्तान से जौहरी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल हमीद नैयर और भारत से थे सियासी तज्ज़ियाकार कमर आगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का और हमारी तरफ से खुदा हाफिज। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर।
जी आप वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मुज़ाकरा सुन रहे हैं और हम बात कर रहे हैं अमेरिका और पाकिस्तान के बीच स्ट्रेटेजिक डायलॉग के बारे में जिसका छठा राउंड पीर को वॉशिंगटन में शुरू हुआ। इस वक्त हम आते हैं तिजारत के शोबे पर, क्योंकि जैसा कि आपके इल्म में है कि बहुत सारी इस तरह की भी बातें हुई कि पाकिस्तान की मईशत को किस तरह मजबूत किया जा सकता है, और इस सिलसिले में यहाँ एहसन इकबाल साहब भी हैं। इस हवाले से हम चलते हैं इस्लामाबाद, जहां से हमें वाइस चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन कैप्टन खालिद शाहीन बट ने ज्वाइन किया है। और बट साहब आपको खुश आमदेद। तो ये बताइए कि ये जो खैर फौजी मामलात के अलावा बहुत सारे जो मुआशी मामलात जेर बहस आए, इसमें कितनी कामयाबी आपके ख्याल में पाकिस्तान को मिलेगी कि पाकिस्तान के जो सनतकार हैं वो चाहते हैं कि तिजारत हो, ये ना हो कि सिर्फ पाकिस्तान इमदाद पर जो है वो चलता रहे, तो आपके ख्याल में कितनी कामयाबी होगी इसमें?
मेरा ख्याल है कि जो लेटेस्ट हमारे पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंट गवर्नमेंट ने चाइना के साथ जो ये तजारती जो राहदारी का अरेंजमेंट और दूसरी जो इन्वेस्टमेंट हो रही है और पाकिस्तान के अंदर एक इंकलाब की पोजिशन है माशी तौर पर, तो उस लिहाज से मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका में भी और वेस्ट में भी फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने पाकिस्तान को सीरियसली लेना शुरू कर दिया है, और ये मेरा ख्याल जरूरत महसूस की जा रही है उस तरफ कि पाकिस्तान के साथ तजारती ताल्लुकात इस नोयत के होने चाहिए कि पाकिस्तान स्टेबल सिचुएशन में आ जाए। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पहली दफा मैं पिछले काफी अरसे से देख रहा हूँ कि पहली दफा पाकिस्तान को बहुत सीरियसली लिया जा रहा है मुआशी बुनियादों से।
अच्छा।
और पाकिस्तान के साथ डेफिनेटली अमेरिका ये चाहेगा कि इस किस्म के ताल्लुक हों कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर स्टेबल हो।
अच्छा।
और पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो है टेररिज्म के हवाले से जो साबका रिकॉर्ड है बड़ा बेहतरीन है, और वो समझते हैं कि अगर मुआशी पोजिशन बेहतर हो जाए पाकिस्तान में तो ये तमाम मसाइल जो है जो इससे लिंक्ड हैं टेररिज्म कह लें या दूसरे, इनको खत्म करने में और भी पाकिस्तान को आसानियां होंगी।
जी जी बिल्कुल, आप हमारे साथ रहें। हमें अभी अभी ज्वाइन किया है पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन एजाज खोकर ने, और खोकर साहब आपको भी खुश आमदेद।
जी वेलकम, थैंक यू।
तो जैसे कि आपने सुना कि कैप्टन खालिद शाहीन भट्ट का कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान को बहुत तवक्कुआत हैं अमेरिका से, आपका कहना है कि भारत और बांग्लादेश को तिजारत में रियायत मिलती है, पाकिस्तान किस तरह की रियायत मांग रहा है अमेरिका से?
देखिए जी, जैसे कि रीजन कंपटीशन जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे जो सराउंडिंग कंट्री हैं लाइक इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, ये तीन इस वक्त मेजर प्लेयर हैं। वो ट्रेड में काफी बड़े हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम तीन कंट्री जो हैं अगर वाकई अमेरिका पाकिस्तान को फेवर करना चाह रहा है तो ये जो ट्रीटमेंट होता है जो फैसिलिटी कस्टम में या दूसरे में का अगर कोई ड्यूटी रिलीफ मिलना है तो वो अगर इक्वली ट्रीट होगा तो पाकिस्तान उससे बेनिफिशरी होगा। इस वक्त आज मैं देख रहा हूँ कि अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट ओबामा ने फरवरी 26 की स्टेटमेंट है नेपाल को गारमेंट इंडस्ट्री को ड्यूटी फ्री एक्सेस किया है फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, इट्स गुड, उन्होंने रीजन बनाया कि वहाँ पे अर्थक्वेक काफी डिजास्टर हुआ है, अर्थक्वेक तो पाकिस्तान में भी आए थे ना, और पाकिस्तान तो फ्रंट लाइन टेररिज्म में वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनर है जो कि हम शुरू से काफी देर से सफर कर रहे हैं, इकोनॉमिकली भी फिजिकली भी हर चीज से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी डिस्टर्ब हुआ है। तो उसके लिए ये है कि मैं एक चीज बताता चलूँ कि 2007-08 में शायद आरओजी की बात कर ली थी कि ये जो कंट्रीज हैं फाटा कंट्रीज हैं फाटा एरियाज हैं वहाँ पे हम इंडस्ट्रियल जोन बनाएंगे ताकि उन लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दी जाए, लेकिन वो आरओजी डिसअपीयर हो गया। अब इन इस तरह की चीजें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शेक करती हैं कि एक तरफ वी आर फ्रंट लाइन पार्टनर विद अमेरिका टेररिज्म, ठीक है, पाकिस्तान गवर्नमेंट इस वक्त जो आर्मी जिस तरह काम कर रही है वी आर वेरी सीरियस, हम उसमें काफी लूज भी किया है, फॉर एग्जाम्पल के फॉरन बायर जो है पाकिस्तान आना छोड़ गया, स्पेशली द अमेरिकन जो ट्रेवल नेगेटिव एडवाइजरी है उसकी वजह से बाहर पाकिस्तान नहीं अब आ रहे। हमारा इमेज सॉफ्ट में डिवेल्प होना चाहिए, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट जो है वो स्टेब्लिश होने चाहिए, और जैसे कि अब चाइना ने पाकिस्तान के साथ एक कॉरिडोर जो शुरू किया है जो कि विद इन नेक्स्ट 3-4 ईयर स्टेब्लिश होगा, उन्होंने अपने एंटरप्रेन्योर को इंसेंटिव दिया है कि अगर आप पाक चाइना कॉरिडोर पे पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको हम सब्सिडाइज रेट पे लोन देंगे। इस तरह की मैं कह रहा था, इट इज माई सजेशन कि कोई अमेरिकन गवर्नमेंट भी अपने एंटरप्रेन्योर को ऐसे को इंसेंटिव दे अगर वो वाकई पाकिस्तान की हेल्प करना चाह रहे हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रांग करना चाह रहे हैं तो ये एक अच्छी अट्रैक्शन होगी यूएस एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि वो पाकिस्तान आए यहाँ पे इन्वेस्ट करें यहाँ से बिजनेस करें।
अच्छा।
और पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी बेटर होगी तो नेचुरली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ती है तो नेचुरली ये टेररिज्म जो है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा, तो स्टेज आएगी कि हम काफी इस पे कंट्रोल कर सकते हैं।
हमें जी हमें यहाँ वॉशिंगटन से IMF के एक साबिक अफसर डॉक्टर जुबैर इकबाल ने ज्वाइन किया है। डॉक्टर जुबैर आपको भी खुश आमदेद। डॉक्टर जुबैर इकबाल,
जी, आवाज आ रही है
जी 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 बिल्कुल आ रही है। तो हमारे साथ इस वक्त वाइस चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन खालिद, कैप्टन खालिद शाहीन भट्ट हैं, और पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन एजाज खोकर हैं। और खोकर साहब का कहना यह है कि अगर अमेरिका से सरमायाकार आएं और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें तो बहुत ही अच्छा होगा। आप क्या देखते हैं, ये जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग हो रहा है और हुआ है कल, इसके बाद कुछ इस तरह की उम्मीद आगे होती है?
देखिए, उम्मीद तो रखनी चाहिए। देखिए, ये पिछले एक साल पहले शुरू हुआ था और उम्मीद तो यही होनी चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता जो टेंशन हैं और जो डिस्प्यूट्स हैं वो कम होते चले जाएंगे और एक किस्म का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स बढ़ सकती हैं। बात ऐसे ये आ जाती है कि अगर आप वहां पर इन्वेस्टमेंट्स चाहते हैं तो किस किस्म की इन्वेस्टमेंट चाहते हैं? क्या आप इन्वेस्टमेंट्स टेक्सटाइल ही में चाहते हैं कि दूसरे इंडस्ट्रीज में चाहते हैं? जहां तक टेक्सटाइल्स का ताल्लुक है या क्लोथिंग का ताल्लुक है, देखिए वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें तमाम दुनिया जो है कम्पीट कर रही है और हमें जरूरी है कि हम खुद उस टेक्नोलॉजी, बड़ी सिंपल सी टेक्नोलॉजी है, उससे बढ़कर नई किस्म की टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं। और उसके लिए जरूरी ये है कि हमें बेसिक कंडीशंस पैदा करनी होंगी पाकिस्तान में, ताकि बाहर के इन्वेस्टर्स आके उनमें इन्वेस्ट करें और उससे फायदा उठाएं। जहां तक टेक्सटाइल्स का मामला है, ये एक पुरानी किस्म की इंडस्ट्री है, इसको थोड़ी हद तक भूल जाना चाहिए। मानता हूं कि इसके अंदर पाकिस्तान को कंपेटिटिवनेस हासिल है, लेकिन उस कंपेटिटिवनेस को ये सीखना चाहिए कि उसको आपको खास कोई आइंदा फायदा नहीं होगा।
अच्छा, यही सवाल मैं करूंगी कैप्टन शाहीन भट्ट से। भट्ट साहब, आप ये बताएं कि यहाँ पर भी जब एहसन इकबाल साहब आए हुए हैं तो हमने भी सुना है कि वो मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे हैं और सरमायाकारी की तरफ उनको मायल करने की कोशिश कर रहे हैं। यह बुनियादी तौर पे पाकिस्तान किस किस्म की सरमायाकारी चाहता है अमरीका से?
मैं समझता हूँ कि सरमायाकारी के साथ साथ ये बात तो दुरुस्त है कि पाकिस्तान चाहेगा कि अमेरिका से भी और सब दूसरे ममालिक से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन इन्वेस्टमेंट के अलावा और भी बड़ी ब्रेक्स हैं जो पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान की अभी जो इंट्रोडक्शन एक इस पूरे एरिया से जो चाइना का जैसे बजाय इकोनॉमिक कॉरिडोर के इंट्रोडक्शन से, ग्वादर पोर्ट के इंट्रोडक्शन से, अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान बिल्कुल कम्प्लीटली कारोबारी लिहाज से भी और सोशल लिहाज से भी पूरा का पूरा चाइना के साथ उनकी लैब में ना चला जाए। उनकी ये भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जो है वो इतने अहम मुल्क है और उनका फ्रंट रनर है उनकी टेररिज्म की फाइट में, तो उनसे उनका लिंक किसी न किसी हवाले से भी रहे और साथ साथ कारोबारी लिंक भी रहे और स्टेबल भी पाकिस्तान हो। ये पहली दफा ये चीजें तब्दील हुई है, इससे पहले ये उनके कंसर्न नहीं थे। इसलिए तजारत और इन्वेस्टमेंट जो है, डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट उन चीजों में हो जिनके जिनमें हम खुद कफील भी हैं और जिनमें हमें जरूरत भी है। उन चीजों में जो है, जिस तरह बताया अफसर ने अभी कि टेक्सटाइल में यकीनन नई चीजों की इंट्रोडक्शन और उसके अलावा जो भी हमारी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें जरूरत है, और आई एम श्योर ये जो हमारी इंडस्ट्री है जो कि काफी अच्छे से बहुत सी इंडस्ट्री टेक्सटाइल में भी जो यहाँ से मूव होकर दूसरे ममालिक में चले गए थे और अब वापसी का रुझान है, उनको अगर नई उनके साथ उनकी नई इक्विपमेंट्स और उनकी जो नई जरूरियात उन्हें पूरी करते हुए उनके इंट्रोडक्शन में अगर अमेरिका इन्वेस्ट करेगा तो पाकिस्तान डेफिनेटली उसको वेलकम करेगा। और उसके अंदर उसके अलावा पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड पॉलिसीज हैं उनमें इम्प्रूवमेंट हो कि हमें मौका मिले पाकिस्तान को और कोटा मिले जिसमें पाकिस्तान जो है एक्सपोर्ट कर सके अमेरिका में अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री।
जी बिल्कुल, हम आपकी तरफ दोबारा आते हैं, लेकिन क्योंकि कुछ लोगों ने कॉल किया है उनको बहुत मुख्तसर सुनते हैं इस मौजू पर। जफर इकबाल, जफर ने कॉल किया है फैसलाबाद से।
अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम।
बात ये है कि अमेरिका की पॉलिसियां जो है ना, वो हम तो पाकिस्तान के हैसियत से हम तो हमेशा हमेशा पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ वफादार रहा, लेकिन हमारे ट्रेड पे कभी प्रेसलर तरमीम लग गई, कभी कुछ हुआ, कभी कोल्ड वार का असर हो गया, कभी रशिया का असर हो गया। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि इंडिया के मुकाबले में जितनी वफादारी हम देते हैं, और इंडिया वो वफादारी नहीं दे सका कोल्ड वार में भी, तो हमें इकोनॉमिकली बैक क्यों रखा जाता है?
जी अच्छा 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 सवाल आपने,
ये तो कुछ किस्मती है कि हमारी कॉरिडोर प्रोग्राम जो है वो हमारे लिए कुछ बेहतर होगा, लेकिन इसमें अमेरिका को भी फेवर करनी चाहिए और हमारे ट्रेड जो है उसको भी खोलना चाहिए।
तो जी 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 आप 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 आपके कॉल करने का शुक्रिया, आपके कॉल करने का शुक्रिया। कैप्टन शाहीन, अगर आप इसका जवाब देना चाहें।
जी मैं यहाँ गुजारिश करना चाहूँगा कि हमें इस वफादारी और दोस्ती और हमदर्दी के जज्बात जो हैं इनसे मेरा ख्याल बाहर निकलना होगा। बात तो जरूरियात की है, तमाम ममालिक हैं अपने 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 मुल्क के इंटरेस्ट में और अपनी अपनी जरूरियत के तहत अपने ताल्लुकात बनाते हैं, मुआशी भी और सोशल भी और सियासी भी, और उस लिहाज से फॉर्चुनेटली पाकिस्तान खास तौर पर आजकल के जमाने में और अब के जमाने में बिल्कुल जरूरत बन गया है वेस्ट की, और मैं समझता हूँ कि ये भी वेस्ट ने यकीन कर लिया है कि अगर इस दुनिया में अमन लाना है अब बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए, तो उसमें पाकिस्तान का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और जब पाकिस्तान का इम्पोर्टेंट रोल डिसाइड हो जाता है तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आने के लिए तमाम मुल्क हैं उनको बहुत अच्छे से पाकिस्तान को आइसोलेट किया रखा, लेकिन अब वक्त है कि वो इनके साथ काम करें, और ये हमारी जरूरियात है, कुछ हमारी जरूरियत है, कुछ अमेरिका की जरूरियत है, कुछ वेस्ट की है, कुछ इंडिया की है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये वक्त आ गया है कि तमाम ममालिक ने ये सोच लिया है कि अगर पाकिस्तान की या उनकी अपनी उन्होंने हेल्प करनी है और टेररिज्म को खत्म करना है तो उसमें पाकिस्तान की मुआशी हालत और कारोबारी हालत बेहतर करनी होगी, उनको उनकी मजबूरी भी आप समझ लें।
जी जी आप दो तीन मिनट और रहें हमारे साथ। खोकर साहब ये बताइए कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ट्रेड जो है वो बेहतर हो अमेरिका के साथ, लेकिन आपके इल्म में है कि बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान में, दहशतगर्दी है, तवानाई का बहरान है, इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे कि मौजूदा जो सरकार है वो कितनी कामयाब रही है?
पहले मैं एक साथ बता रहे थे टेक्सटाइल इज अ बेन, टेक्सटाइल ठीक है, पाकिस्तान का 57% शेयर है, लेकिन अमेरिका से हमें मैन पावर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए हमें ऐसी इंडस्ट्री कोई हो, ऑटोमोबाइल हो, एग्रीकल्चर में अमेरिका हमारी हेल्प कर सकता है कि जैसे कार्टन में अच्छे सीड्स हो, क्वालिटी कार्टन ग्रो हो, तो ये चीजें सारी जब आएंगी तो नेचुरली हमारा गोल जो है वो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट देनी है अपनी जनरेशन को, क्योंकि वी हैव अबाउट 60% जो हमारी इस वक्त पॉपुलेशन है दैट इज दी 30 से 40 तक हैं, तो उन लोगों को अगर एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जब बेहतर होनी शुरू हो जाती है तो सारे हालात जो हैं वो बेहतर होते हैं। दूसरा ये है कि हमारी गवर्नमेंट इस वक्त, आपका जो क्वेश्चन है कि इस वक्त हमारा फुली फोकस्ड है गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिसिटी जो शॉर्टेज है, आई थिंक के काफी हद तक ये पिछले 2 सालों में बेहतरी आई है इंडस्ट्री के लिए, और आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंस के जो प्रोडक्ट इस वक्त पाइपलाइन में है बाय 2018 आई थिंक 90% हमारे जो शॉर्टफॉल है ये फिलअप हो जाएगा, ये आई मीन अप मार्क आ जाएगा, और जब इंडस्ट्री फुल फ्लैश चलनी शुरू हो जाएगी तो नेचुरली हमें फिर एक्सपोर्ट मार्केट चाहिए होती है। एक्सपोर्ट मार्केट में हमारे पास GSP प्लस का स्टेटस है फॉर द नेक्स्ट 8 ईयर मोर, वो हमारी डेवलपमेंट हो रही है इस वक्त। शॉर्ट टाइम हमें बाकी प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन पाकिस्तान इज टेक्सटाइल के अलावा देर आर सो मेनी अदर एरियाज हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट अमेरिकन आके कर सकते हैं, और यहाँ पे लोकल जो कमोडिटी है वो प्रोड्यूस हो सकती है।
जी जी बिल्कुल, हम इन्वेस्टमेंट
पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट जो है ना, जब तक ये स्टेब्लिश नहीं होगा ये सारी डेवलपमेंट रुकी हुई है, वी आर वेरी मच लैकिंग इन पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट। मैक्सिमम सेशन होने चाहिए, एक दूसरे के साथ डायलॉग होने चाहिए, डेलीगेशन एक्सचेंज ऑफ डेलीगेशन होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन इन एग्जीबिशन होनी चाहिए, तो एरियाज खुद खुद निकलते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है, जब मिलेंगे लोग एक दूसरे के साथ विद पर्सनल डिस्कशन होती है तो प्रोजेक्ट सामने आते जाते हैं.
जी जी डॉक्टर जुबैर, ये बताइए, आप भी जानते हैं कि अमेरिका रफ्ता रफ्ता अफगानिस्तान से अपनी फौजें निकाल रहा है, और 2016 के बाद आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान किसके साथ जो है तिजारत करेगा, और ये जो चीन और राहदारी मंसूबा है, पाक चीन राहदारी मंसूबा, उसको किस हद तक अमरीका कबूल करेगा?
देखिए वो तो एक रियलिटी बन गई है, ये जो एग्रीमेंट है, कॉरिडोर एग्रीमेंट जो है ना, ये तो एक रियलिटी बन चुकी है और अमेरिका को इसके साथ कोई खास प्रॉब्लम नहीं है. जब तक ये जो है कॉरिडोर जो है ये कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल किया जाए और अमेरिकन इंटरेस्ट पे कोई बड़ा असर ना पड़े. जहां तक अमेरिकन इंटरेस्ट का मामला है अफगानिस्तान में, वो तो परमानेंट किस्म का इन्वॉल्वमेंट है. चाहे वहां से फोर्सेज बुला भी ली जाए, उसके बावजूद अमेरिका अफगानिस्तान में काफी हद तक इन्वॉल्व रहेगा और उसको रहना चाहिए भी है. ऐसी कंडीशन में ये जो कॉरिडोर है ये एक किस्म का एक कॉन्ड्यूट बन सकता है जिसके तहत सेंट्रल एशिया के साथ जो ट्रेड है जिसमें अफगानिस्तान एक आम हिस्सा रखता है वो भी बढ़ सकती है. मुश्किल दरअसल ये है कि हमने अब तक पाकिस्तान के अंदर जो मुश्किलात हैं उनको हल करने के मुतालिक नहीं सोचा. अब हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी एक्सपोर्ट जो है वो कमजोर हो रही है और बाकी मुल्कों को पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को ज्यादा एक्सेप्ट करना चाहिए. बात दरअसल ये आ जाती है कि आया पाकिस्तान में कंपेटिटिवनेस है कि नहीं, क्या पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स इस काबिल हैं कि नहीं कि वो दूसरों से कम्पीट कर सके. अगर आपकी डोमेस्टिक पॉलिसीज गलत होंगी, अगर आप वहां पर आर्टिफिशियली एक्सचेंज रेट को बढ़ा के रखेंगे तो फिर आपके एक्सपोर्ट्स कौन खरीदेगा. तो ये इस किस्म की चीजें होती हैं कि जब आप दूसरे मुल्कों से कहते हैं कि वो आपसे कोऑपरेट करें और आपकी एक्सपोर्ट्स को एंट्रेंस की इजाजत दें, उसके साथ आपको ये भी सोचना जरूरी है कि वो आपके एक्सपोर्ट्स जो है वो कंपेटिटिव है कि नहीं.
और इसका जवाब सिर्फ कैप्टन शाहीन भट्ट दे सकते हैं. जी, आप बताइए कैप्टन भट्ट कि जी कैप्टन शाहीन भट्ट, क्योंकि हमने उनको लिया था. कैप्टन शाहीन भट्ट आप हैं हमारे साथ?
जी, मैं हूँ.
तो जी बिल्कुल आ रही है. और जिस तरह से डॉक्टर जुबैर इकबाल कह रहे हैं कि पहले तो पाकिस्तान को अपने एक्सपोर्ट्स को कम्पिटिटिव बनाना होगा, वो सारी चीज़ें करनी होंगी जो मुल्क के अंदर करने की ज़रूरत है. तवानाई का बहरान जो है उसको हल करना होगा, दहशतगर्दी के खिलाफ काम करना होगा. इस सिलसिले में बताइए क्या कर रही है सरकार?
ये डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक बात कही है, एग्री विद हिम. लेकिन बात ये है कि ये भी हकीकत है कि पिछले 20 साल से पाकिस्तान सबसे बड़ा सफर रहा है इन द हैंड ऑफ टेररिज्म एंड द वॉर विद अफगानिस्तान एंड ऑल दैट. अब उस चक्कर में मतलब पाकिस्तान एक फ्रंट टर्नर था और ये जंग कतई नजर इसके कि ये जंग किसकी थी, बहरहाल ये पूरी दुनिया की जंग थी. और लेटर ऑन हमें ये रियलाइज भी हुआ कि इसमें पूरी दुनिया के इंटरेस्ट इन्वॉल्व थे और पाकिस्तान ने उस जंग को लड़ा और उसमें नुकसान किया और बहुत पीछे रह गया. तो इसलिए इस सूरत में अमेरिका को या दूसरे ममालिक को, जिस तरह चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, इसी तरह सबको बढ़ के पाकिस्तान की हेल्प तो करनी चाहिए. हेल्प इन अ सेंस कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, पाकिस्तान के साथ ट्रेड रिलेशनशिप बेहतर करें और पाकिस्तान को ये रियलाइज करें कि पाकिस्तान के अंदर जो स्टेबिलिटी है ये इस वक्त एक लिहाज से पूरी दुनिया के अमन की जामन है. तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसमें मुझे यकीन है कि अपनी अपनी जरूरत का लिहाज करते हुए और दुनिया में अमन जो कि ख्वाहिश है सब्जी के कायम हो, उसके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि तमाम ममालिक जो है पाकिस्तान में फैसिलिटेट करें. जिस तरह पाकिस्तान में एनर्जी के लिहाज से बहुत पीछे रह गए और उसमें कुछ काम पाकिस्तान कर रहे, कुछ चाइना, इसमें दूसरे कंट्रीज को भी चाहिए कि इसके अंदर पाकिस्तान में इसको ओवरकम करने के लिए फैसिलिटेशन दें.
अच्छा,
और उसके अलावा और भी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं बराबरी के लिहाज से देखें, चाहे हमारे साथ हमारे नेबर जो कंट्री है इंडिया, हिंदुस्तान, उसमें बहुत लेस ने इंटरेस्ट लिया, बहुत लेस ने इन्वेस्टमेंट की. तो ये तो हो नहीं सकता कि एक मुल्क जो है जिनके बॉर्डर मिलते हो तो एक मुल्क के साथ आप इतना बेहतरीन ट्रीटमेंट करें और दूसरे को पीछे रखने में आप पूरी तरह इग्नोर करें.
बहुत शुक्रिया,
डेफिनेटली
बहुत शुक्रिया. हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हुआ. हमारे साथ थे ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन के वाइस चेयरमैन कैप्टन खालिद शाहीन भट्ट, उनके साथ थे सनदकार एजाज खोकर اور سابق آئی ایم ایف کے افسر ڈاکٹر زبیر اقبال. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئر تھے کرٹس بائنم, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے